संबंध। अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितः प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। व्याख्या। गीता की एक शैली है कि जो साधक जिस साधन के द्वारा सिद्ध होता है उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया जाता है। जैसे भक्ति योग में साधक भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं, ऐसे अनन्य योग से उपासना करता है, अतः सिद्ध अवस्था में वह संपूर्ण प्राणियों में द्वेष भाव से रहित हो जाता है। ज्ञान योग में साधक स्वयं को गुणों से सर्वथा असंबद्ध एवं निर्लिप्त देखता है, अतः सिद्धावस्था में संपूर्ण गुणों से सर्वथा अतीत हो जाता है। ऐसे ही कर्म योग में कामना के त्याग की बात मुख्य कही गई है, अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। यह बात इस श्लोक में बताते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। इन पदों का तात्पर्य यह हुआ कि कामना न तो स्वयं में है और न मन में ही है। कामना तो आने जाने वाली है और स्वयं निरंतर रहने वाला है, अतः स्वयं में कामना कैसे हो सकती है। मन एक करण है और उसमें भी कामना निरंतर नहीं रहती, प्रत्युत उसमें आती है मनोगतान, अतः मन में भी कामना कैसे हो सकती है। परंतु शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मन में आने वाली कामनाओं को अपने में मान लेता है। जाहति क्रिया के साथ प्र उपसर्ग देने का तात्पर्य है कि साधक कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है, किसी भी कामना का कोई भी अंश किंचन मात्र भी नहीं रहता, अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं होता और जिससे अपना कुछ भी संबंध नहीं है उसका भी त्याग नहीं होता। त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर उसको अपना मान लिया है। ऐसे ही कामना अपने में नहीं है पर उसको अपने में मान लिया है। इस मान्यता का त्याग करने को यहाँ प्रजहाति पद से कहा गया है। यहाँ कामान शब्द में बहुवचन होने से सर्वान पद उसके अंतर्गत आ जाता है, फिर भी सर्वान पद देने का तात्पर्य कोई भी कामना न रहे और किसी भी कामना का कोई भी अंश बाकी न रहे। आत्मन्येव आत्मना तुष्ट है, जिस काल में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, अर्थात अपने आप में सहज स्वाभाविक संतोष होता है। संतोष दो प्रकार का होता है, एक संतोष गुण है और एक संतोष स्वरूप है। अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई भी इच्छा न हो यह संतोष गुण है और स्वयं में असंतोष का अत्यंत अभाव है, यह संतोष का स्वरूप है। यह स्वरूप भूत संतोष स्वतः सदा रहता है, उसके लिए कोई अभ्यास या विचार नहीं करना पड़ता, स्वरूपभूत संतोष में प्रज्ञा स्वतः स्थिर होती है। स्थित प्रज्ञा तदोच्यते। स्वयं जब बहुशाखा वाली अनंत कामनाओं को अपने में मानता है, उस समय भी कामनाएं वास्तव में अपने में नहीं होती और स्वयं स्थित प्रज्ञ ही था, परंतु उस समय अपने में कामनाएं मानने के कारण बुद्धि स्थिर न होने से वह स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जा सकता था, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव नहीं होता था। अब उसने अपने में से संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया और उस मान्यता को हटा दिया, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव हो जाता है। साधक तो बुद्धि को स्थिर बनाता है, परंतु कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर बुद्धि को स्थिर बनाना नहीं पड़ता है, वह स्वतः स्वाभाविक स्थिर हो ही जाती है। कर्मयोग में साधक का कर्मों से ज्यादा संबंध रहता है, उसके लिए योग में आरूढ़ होने में भी कर्म कारण है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। इसलिए कर्मयोगी का कर्मों के साथ संबंध साधक अवस्था में रहता है, सिद्ध अवस्था में भी रहता है। सिद्ध अवस्था में कर्मयोगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार कर्म होते रहते हैं, जो दूसरों के लिए आदर्श है, जैसे तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक। इसी बात को भगवान ने चौथे अध्याय में भी कहा है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है और निर्लिप्त रहते हुए ही कर्म करता है। कर्मण्य कर्म यह पश्चेद अकर्मणि च कर्म यह। भगवान ने 53वें श्लोक में योग की प्राप्ति में बुद्धि की दो बातें कही थी। संसार से हटने में तो बुद्धि निश्चल हो और परमात्मा में लगने में बुद्धि अचल हो, अर्थात निश्चल कहकर संसार का त्याग बताया और अचल कहकर परमात्मा में स्थिति बताई। उन्हीं दो बातों को लेकर यह यदा और तदा पद से कहा गया है कि जब साधक कामनाओं से सर्वथा रहित हो जाता है और अपने स्वरूप में संतुष्ट रहता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य है कि जब तक कामना का अंश रहता है तब तक वह साधक कहलाता है, और जब कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है तब वह सिद्ध कहलाता है। इन्हीं दो बातों का वर्णन भगवान ने इस अध्याय की समाप्ति तक किया है। जैसे यहाँ प्रजाति यदा कामान सर्वान पदों से संसार का त्याग बताया और फिर आत्मन्येव आत्मना तुष्टः पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 56वें श्लोक के पहले भाग में संसार का त्याग और स्थित धीर मुनि पद से परमात्मा में स्थिति बताई। 57वें और 58वें श्लोक में पहले संसार का त्याग बताया और फिर तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 59वें श्लोक के पहले भाग में संसार का त्याग बताया और परम दृष्ट्वा पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 60वें श्लोक से 61वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया और फिर युक्त आसीत मत्परः आदि पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 62वें से 65वें श्लोकों तक पहले संसार का त्याग बताया और फिर बुद्धि पर्यवतिष्ठते पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 66वें से 68वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया, फिर तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 69वें श्लोक में या निशा सर्वभूतानाम तथा यस्याम जागृति भूतानी, इन पदों से संसार का त्याग बताया, और तस्याम जागृति संयमी तथा सा निशा पश्यतो मुने पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 70वें और 71वें श्लोक में पहले संसार का त्याग और फिर स शांतिम अधिगच्छति पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 72वें श्लोक में नैनाम प्राप्य विमुह्यति पदों से संसार का त्याग बताया और ब्रह्म निर्वाण मृच्छति आदि पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। परिशिष्ट भाव, एक विभाग अस्थिर बुद्धि वालों का है और एक विभाग स्थिर बुद्धि वालों का है। अस्थिर बुद्धि वालों की बात तो 41वें से 44वें श्लोक तक कह दी, अब स्थिर बुद्धि वालों की बात 55वें से 71वें श्लोक तक कहते हैं। जिस समय साधक सांसारिक रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उस समय वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जिसका परमात्मा का उद्देश्य होता है, उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली होती है, क्योंकि परमात्मा भी एक ही है। परंतु जिसका संसार का उद्देश्य होता है, उसकी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली होती है, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं असंख्य हैं। गीता 2 अध्याय का 41वां श्लोक। समता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत आवश्यक है। पातंजलि योग दर्शन में तो मन की स्थिरता माने वृत्ति निरोध को महत्व दिया गया, पर गीता बुद्धि की स्थिरता माने उद्देश्य की दृढ़ता को ही महत्व देती है। कारण कि कल्याण प्राप्ति में मन की स्थिरता का उतना महत्व नहीं है जितना बुद्धि की स्थिरता का महत्व है। मन की स्थिरता से लौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पर बुद्धि की स्थिरता से पारमार्थिक सिद्धि कल्याण की प्राप्ति होती है। कर्मयोग में बुद्धि की स्थिरता ही मुख्य है। अगर मन की स्थिरता होगी तो कर्मयोगी कर्तव्य कर्म कैसे करेगा? कारण कि मन स्थिर होने पर बाहरी क्रियाएं रुक जाएंगी। भगवान भी योग माने समता में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि, प्रजाहाति और सर्वान कामान पद देने का तात्पर्य किंचन मात्र भी कामना न रहे, पूरा का पूरा त्याग हो जाए। कारण कि ये कामना ही परमात्मा प्राप्ति में खास बाधक है।